ओम नमस्ते जी। आज का विषय है उपासना एवं चित्त की स्थिरता, इस विषयक द्वितीय श्रव्यकणिका। महानुभाव, कल के विषय में हमने ये सुनने का प्रयास किया कि एक बहुत बड़ी समस्या है साधक के सामने कि वो ध्यान करना चाहता है पर ध्यान में उसका मन नहीं लगता, चंचलता बराबर बनी रहती है, सांसारिक विषयों का तांता सतत बना रहता है, विषयों का उठाया जाना किसी भी तरह से वो अपने नियंत्रण में नहीं पाता, अपने मन को स्थैर्य एवं संतुलन युक्त नहीं बना पाता, ईश्वर के प्रति समर्पण रुचि नहीं हो पाती। तो उसके लिए हमने आपको साधना विधि बताई कि वैदिक साधना विधि के अंतर्गत चेतन का ध्यान किया जाता है, जड़ का नहीं किया जाता। तो इसलिए अपने अलावा दूसरा चेतन पदार्थ है ईश्वर। तो जब मैं ध्यान करता हूं तो सबसे पहली बात ईश्वर से मिलना और उससे वार्तालाप करना। महानुभाव, व्यक्तिगत व्यवहार जीवन में हमने ईश्वर की सदा से उपेक्षा की है और इसलिए ईश्वर प्रणिधान के संस्कार हमारे हैं नहीं। हमको यह पता नहीं है कि ईश्वर से हमको क्या क्या लाभ हो सकते हैं या अभी वर्तमान में ईश्वर हमको क्या क्या लाभ दे रहा है, और ईश्वर प्रणिधान सिद्ध होने पर या ईश्वर उन्मुख, ब्रह्म उन्मुख जीवन होने पर जीवन कितना उत्थान को प्राप्त हो सकता है, कितना समृद्ध हो सकता है, कितना सुखी हो सकते हैं, लौकिक क्षेत्र में भी कितना हम जो है आनंद पूर्वक जी सकते हैं, इस बात के विषय में उसको किसी ने बताया नहीं। यदि बताया है तो उस पता है तो उस चीज को लागू करने के लिए जो कर्म किए जाने चाहिए वो कभी किए नहीं, ईश्वर प्रणिधान कभी बनाया नहीं, और इसलिए ईश्वर विषय संस्कार केवल शब्दों में है, अनुमान का और प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। और यही कारण है व्यक्ति साधना में एकाग्र नहीं हो पाता, चिंतन में उसका मन नहीं लगता, बार बार वो विषय उठाता है। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात हमने कही, संध्या अर्थात ईश्वर से मिलना और उससे वार्तालाप करना। दूसरा, संध्या अर्थात ईश्वर से मांगना। और तीसरा, संध्या अर्थात ईश्वर जैसा बनना, यानी स्तुति प्रार्थना उपासना का एक व्यावहारिक प्रारूप मैंने इन तीन वाक्यों के माध्यम से आपके सामने रखा। तो सबसे पहली बात, ईश्वर से मिलना उससे बातें करना। गत श्रव्य कणिका में हमने बताने का प्रयास किया कि इसके लिए जप किया जाता है। तो जप के तीन अंग हमने बताए, शब्द, अर्थ और संबंध। इसमें भी एक साधक समस्या अनुभव करता है, जब भी वो जप करने लगता है, गायत्री मंत्र बोलता है या संध्या का कोई मंत्र ले लेता है या अन्य कोई आध्यात्मिक प्रेरणा देने वाला मंत्र ले लेता है, और जब उसका उच्चारण करता है तो इधर मंत्र उच्चारण हो रहा है साथ साथ पीछे पीछे उसको न जाने कहां कहां से विचार आते हैं। अब यदि इसके विषय में मैंने गत श्रव्य कणिका में बताने का प्रयास किया था कि जिन संस्कारों का आधिक्य, जिन संस्कारों की तीव्रता अंदर तीव्रता से भरे होते हैं, वे उस समय चित्त उसको निकाल निकाल के दिखाता है। अब यहां एक सवाल यह भी होता है साधक को कि मैं अन्य सांसारिक कामों को करता हूं तब मेरा मन अनिकाग्र नहीं होता, अर्थात जब मैं पढ़ रहा होता हूं तो इधर उधर नहीं भटकता मेरा मन, चित्त अशांत चंचल नहीं होता, जब मैं टीवी देखता हूं तो मेरा मन अशांत चंचल नहीं होता, जब ऑफिस में काम करता हूं, अकाउंट्स का काम लिख रहा होता हूं तो मेरा मन चंचल नहीं होता, किसी को प्रवचन दे रहा होता हूं या किसी का प्रवचन सुन रहा होता हूं तो मन मेरा चंचल नहीं हो उठता, इधर उधर के विचार नहीं सता दे। लेकिन जैसे ही ध्यान में बैठता हूं, ये विचार न जाने कहां कहां से आते हैं, एकाग्र करना चाहता हूं, अन्य अन्य सांसारिक कामों को करते हुए जो अप्रयास एकाग्र हो रहा था मन, यहां पर ध्यान में बैठते ही कैसे अनेकाग्र हो जाता है, चंचल हो जाता है और व्याकुल कर देता है भीतर से विषयों को उठा उठा करके। महानुभाव, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। हमने विगत श्रव्य कणिकाओं में यद्यपि ये बात बताई है फिर भी दोबारा आपको बता देते हैं, नए साधकों को भी पता चल जाएंगी। होता यूं है, कल्पना कीजिए, आपने एक बड़ी बाल्टी ले ली, उस बाल्टी के अंदर आपने 100 गोले रखे। अब उन गोलों को आपने अलग अलग रंग दिए, 70 गोले उसमें काले रंग के थे, 20 गोले उसमें से लाल रंग के थे और 10 गोले उसमें से जो है सफेद रंग के थे। अब सबसे कम संख्या में गोलों की जो है सफेद रंगीन गोले थे, उससे अधिक यानी 20 गोले लाल रंग के और 70 गोले, 100 में से 70 गोले काले रंग के थे। अब पहचान का तरीका केवल और केवल रूप दर्शन से है। आपने आंखों पर पट्टी बांध ली, अब गोलों को जो है मिक्सअप किया, एक दूसरे में मिलाया, अच्छी प्रकार घुमा दिया आपस में, और आप रैंडमली है ना, पहले जब 15 गोले निकालेंगे तो सर्वाधिक कौन से गोले आने की संभावना रहेगी, अर्थात अधिक संख्या 70 की काले गोलों की है, इसलिए सर्वाधिक गोले तो वही आएंगे। हो सकता है उन पहले 15 में एकाध ही गोला लाल या सफेद आए या न भी आए। इससे पता चलता है महानुभाव, ये एक लौकिक उदाहरण है। अब हमने ईश्वर प्रणिधान विषयक संस्कार अपने जीवन में कितने बनाए, कब कब बनाए, ईश्वर मेरे साथ जीवन में जुड़ा हुआ है इस बात को दिन भर में कितना याद किया, किन किन पलों में किया, नहीं किया। तो ईश्वर प्रणिधान के पल हमारे जीवन में बहुत अल्प थे, और संसार ही संसार, जब से आंख खोली है तो ये शरीर को देख रहे हैं, इस संसार को देख रहे हैं, सगे संबंधियों को देख रहे हैं, तो अनित्य संसार के साथ ही संबंध बनाए हुए हैं और इसी के संस्कार अंदर भरे हुए हैं। जैसा पीछे से चला आ रहा है राग द्वेष और मोह जनित संस्कार उठा उठा करके सामने आलम बनाने पर, वैसा वैसा रिएक्ट कर रहे हैं और उसी के संस्कार बना रहे हैं। कभी हमने ईश्वर विषयक संस्कार बनाने का प्रयास नहीं किया, यानी सफेद रंग के गोले हमारे चित्त में ईश्वर प्रणिधान रूपी है ही नहीं। जब है ही नहीं तो आप अभी सब प्रयास इसको करना चाह रहे हो तो वो कैसे सामने आएंगे, नहीं आएंगे। और जो ये समस्या थी कि अन्य काम करते हुए चित्त नहीं भटकता, इसका भी थोड़ा सा विवेचन कर लेते हैं। जैसे आप कल्पना कीजिए कि पढ़ाई कर रहे हैं या प्रवचन सुन रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या अकाउंट्स लिख रहे हैं या सब्जी काट रहे हैं या झाड़ू लगा रहे हैं, इधर उधर मन नहीं भटकता, अपेक्षाकृत अधिक एकाग्र रहता है। और जैसे ही ध्यान में बैठते हैं जो है मन भटकता है। ऐसा नहीं है महानुभाव कि बाहरी कामों को करते हुए हमारा मन नहीं भटकता, उस समय वो भटका हुआ ही है पर उसकी प्रतीति नहीं हो रही है। प्रमाण वृत्ति, अब देखो ये 5 इंद्रियां हैं, देखना, सुनना, चखना, सूंघना और छूना। जब जीवात्मा ध्यान नहीं कर रहा होता, अर्थात प्रत्याहार सिद्ध नहीं कर रहा होता, इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ना और बाह्य जगत से संबंध विच्छेद कर देना, यह है प्रत्याहार। जब आप प्रत्याहार नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या प्रवचन दे रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या और कोई काम कर रहे हैं, तो प्रत्याहार तो हो नहीं रहा। फिर प्रमाण वृत्तियों के माध्यम से आप संसार में ही तो जा रहे हो, तो 5 इंद्रियां उस समय कार्यरत होती हैं। फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि जो है आप एकाग्र हो गए हो, ये एकाग्रता की परिभाषा में ही नहीं आता। हाँ, बहुत उच्च अवस्था में व्यक्ति भीतर से परमात्मा से जुड़ करके ईश्वर प्रणिधान सिद्ध करके आंख खोल करके भी समाधिस्थ हो सकता है, वो एक भिन्न बात है। पर अभी उसको ईश्वर की पहचान बनी नहीं ना, ईश्वर विषयक संस्कार है ही नहीं, तो फिर वो आंख खोल करके एकाग्र हुआ ये कहते नहीं बनता। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। इसका आंतरिक रूप से एकाग्र होने की प्रक्रिया को थोड़ा सा समझते हैं कि जब हम अंदर ध्यान करने को बैठते हैं तब तो एकाग्र होना चाहिए। चलो बाहर हमने एकाग्र नहीं होते, बाहर के कामों को करते हुए अनेकाग्र ही होते हैं, पर भूल से ऐसा मान लेते हैं कि हमारा चित्त लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। चलो अंदर जब हम ध्यान करते हैं तो उस समय तो लगना चाहिए, उस समय क्यों नहीं लगता, अब उसके विषय में भी समझो। जैसे जेठ माह की दोपहरी में छत के ऊपर, यानी मई महीने में दिन भर आप छत के ऊपर कोई कागज रखो या कपास का टुकड़ा रखो, वो महज थोड़ा सा गर्म होगा, इतना सा होगा उसमें परिवर्तन, परंतु वही कागज का टुकड़ा यदि मैग्नीफाइंग ग्लास, जो भिंग होता है वो मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको फोकस्ड करो किरणों को और उसके ऊपर डालो, तो आधे मिनट के अंदर कुछ ही पलों में वो कागज जल जाता है या वो कपास का टुकड़ा जल जाता है। ये क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि जो किरणों के अंदर वो तपाने की जो शक्ति थी उसको आपने संघननित करके, फोकस्ड करके एक जगह केंद्रित किया तो उसने काम करके दिखाया। ठीक ऐसे ही जब हम प्रत्याहार सिद्ध करते हैं, इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ते हैं, तो चित्त जो है मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है और अंदर जो भरा हुआ है चित्त के अंदर अधिकायत से वही निकाल निकाल करके देता है। जो बाहर काम करते हुए वो अंदर फोकसिंग नहीं हो पा रहा था इतना, इसलिए ऐसा लग रहा था और इंद्रियों को उनका व्यापार मिल रहा था, आंख को रूप मिल रहा था, कान को शब्द मिल रहे थे, नासिका को गंध मिल रहा था, त्वचा को वायु आदि का स्पर्श का अनुभूति मिल रहा था, तो वो इधर उधर था। लेकिन अब जब आपने इंद्रियों का प्रत्याहार सिद्ध किया तो अब मन जो है मन के लिए काम मिल गया, तो उसने फोकसिंग किया और अंदर के ही जो है कचरा आपने भर रखा है संसार का वही वही निकाल करके दिखाने लगा। इस विषय में महानुभाव और गहन बातें आपको अन्य श्रव्य कणिकाओं में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शम।